أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو السلام علیکم. ہم اپنے آج کے کاریکرم میں اپنی پچھلی بحث کو ہی آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ آپ لوگ انشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے کاریکرم میں اس بارے میں بات چیت کو آرمبھ کیا تھا کہ نماز سے سمبندھت وہ شنکائیں جس کے اوپر انسان کو دھیان نہیں دینا ہے, یعنی اگر یہ شنکائیں نماز کی استھتی میں نماز پڑھتے سمے انسان کے سامنے پیش آ جائیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس کے لیے کوئی شنکا نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے. اسی بات چیت کو ہم اپنے اس کاریکرم میں آگے بڑھائیں گے. وہ شنکائیں یا وہ استھان جہاں پر اگر نماز پڑھتے سمے انسان کو شنکا ہو جائے تو اس کو اپنی شنکا پر دھیان نہیں دینا چاہیے, ان میں سے ایک اس سمے ہے کہ جب نماز جماعت سے ہو رہی ہو. اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے اور امام یا مامون میں سے کسی ایک کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو, مثلاً امام نماز پڑھ رہا تھا, کسی ظہر یا عصر یا کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا, اس کو نماز پڑھتے سمے شنکا ہوئی کہ یہ کون سی رکعت ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, کوئی بھی اس پرکار کی شنکا ہوئی, لیکن جو معموم ہے وہ لوگ جو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یاد تھا کہ نماز کی رکعت کون سی ہے, تو اگر وہ لوگ کوئی ذکر پڑھ کے مثلا سبحان اللہ کہہ کے یا کوئی اور ذکر پڑھ کے اس پرکار جتا دیں کہ امام کو یہ یاد آ جائے کہ وہ رکعت کون سی ہے, تو ایسی استھتی میں اس امام کو اپنی شنکا کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو نماز کو اپنی آگے بڑھا دینا چاہیے, اس کی نماز صحیح ہے. ایسے ہی استھتی اس کے الٹ بھی آتی ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معموم کو شک ہے رکعت کے بارے میں, وہ سوچ رہا ہے نماز میں جو پڑھ رہا ہوں دوسری ہے یا تیسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, اسی پرکار کوئی اور شک ہو رہا ہے یعنی نماز کی رکعتوں کے بارے میں, لیکن وہ ویکتی جو نماز پڑھا رہا ہے جو امام جماعت ہے اس کو یاد ہے کہ وہ کس رکعت میں ہے, تو اگر اس کو یاد ہے تو معموم کو چاہیے کہ اسی امام کے ساتھ اپنی نماز کو تمام کر دے اور اپنی رکعت کے بارے میں ہونے والی سندیہوں کے پیچھے نہ جائے, اس کا کوئی پرواہ نہ کرے اور اس کی نماز صحیح ہوگی. اور دوسرا استھان اس کے بعد کا استھان کہ جب انسان کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں یا نماز میں شک ہو تو اپنی شنکا کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے, یہ اس سمے ہے جب انسان مستحب نماز پڑھ رہا ہو. تو اگر انسان مستحب نماز پڑھ رہا ہے تو اور مستحب نماز پڑھتے سمے اس کو نماز کے بارے میں شنکا ہوتی ہے, اس کو وہی کاریہ کرنا چاہیے جو کثیر الشک یا اس ویکتی کے بارے ہم نے پچھلے پروگرام میں جو بتایا تھا کہ جس کو بہت زیادہ سندیہ ہوتا ہے, تو جیسا ہم نے احکام اس کے بارے میں بتایا تھا وہی احکام یہاں پر بھی جاری ہوں گے. یہ احکام کون سے اس کو ہم سنکھیپ میں آج پھر بیان کر دیں تاکہ بات اسپشٹ ہو جائے کہ اگر انسان نماز پڑھتے سمے یعنی اگر نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو اگر آگے کی طرف دھیان دیتے ہوئے نماز باطل نہ ہوتی ہو تو یہ وہی کرے گا, یعنی اگر دو رکعتی نماز ہے مستحب کی اگر پڑھ رہا ہے اس کو شک ہوا کہ رکعت پہلی ہے یا دوسری ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ مانے دوسری رکعت ہے اور نماز کو تمام کر دے, لیکن اگر آگے کی رکعت کو سمجھتے ہوئے نماز باطل ہو جاتی ہو یعنی اس سے آگے نکل جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے کم کے اوپر یہ سمجھے اس کی رکعت کم تھی. جیسے اگر دو رکعتی مستحب نماز پڑھ رہا ہے اس کو یہ سندیہ ہوتا ہے یہ شک ہوتا ہے کہ جو نماز یہ پڑھ رہا ہے وہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میری رکعت دوسری ہے اور یہی سمجھتے ہوئے نماز کو سماپت کر دے, اس کی نماز صحیح ہوگی. اس کے بعد جو کثیر الشک میں ہم نے مسئلے بتائے تھے یہی جو مسئلے یہاں پر بھی جاری ہوں گے یعنی مستحب نمازوں میں کہ جب انسان کو نماز کے اجزاء یا نماز کے انش کے بارے میں سندیہ ہو तो उस समय एक मुस्तहब नमाज़ पढ़ने वाले को क्या करना चाहिए? तो अगर वो ये समझे, ये जानना कि नमाज़ का उस अंग के बारे में, उस अंश के बारे में अंजाम दिए जाने का अगर समझे, तो वो नमाज़ को बातिल ना करता हो, तो उसको ये समझे कि उसने बातिल, तो उसको ये समझे कि उसने उस चीज़ को अंजाम दिया है। जैसे अगर इंसान को ये संदेह होता है कि उसने नमाज में एक सजदा किया था, दो सजदा किया है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसने दो सजदे कर लिए थे। लेकिन अगर उसको ज़्यादा करने पर या अंजाम देने के बारे में नमाज बातिल हो जाती हो, जैसे अगर संदेह हो उसको कि उसने एक रुकू किया है या दो रुकू किया है, तो उसको चाहिए कि वो ये समझे कि उसने अंजाम नहीं दिया है, यानी वो यही समझे कि उसने एक ही रुकू किया था और उसकी नमाज सही होगी। तो ये वो मसले थे जो एक मुस्तहब नमाज पढ़ने वाले के बारे में उसको ध्यान रखने की आवश्यकता थी। तो ये हमने आपके सामने बयान किए वो मसाइल जिसमें इंसान अपने शक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, उसका शक मान्य नहीं होगा। तो जैसा कि हमने जब अपने शकियात नमाज के अध्याय को खोला था और उसके बारे में बातचीत आरंभ की थी, तो हमने उसी समय बताया था कि नमाज में होने वाले संदेह, होने वाली शंकाएं तीन प्रकार की होती हैं। या शंकाएं वो होती हैं जो नमाज के किसी अंश या नमाज के किसी जुज़ के बारे में शंकाएं होती हैं, जिसको हमने पहले बता दिया, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से बातचीत कर चुके हैं आपके सामने। दूसरी शंकाएं उस बारे में होती हैं जब नमाज की रकतों के बारे में शंकाएं होती हैं, जिसको हमने अभी कई प्रोग्राम में बयान किया और अभी उसको समाप्त किया। तीसरी शंका जो नमाज के बारे में होती है वो है स्वयं नमाज के बारे में। ये नमाज की तीसरी शंका है, इसके बारे में हम आपके सामने अभी कुछ मसले बयान करेंगे। तो जो शंका होती है खुद स्वयं नमाज के बारे में, कि अगर नमाज के पढ़ने या ना पढ़ने, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में अगर इंसान को शंका हो जाए तो क्या करे। तो अगर इंसान को शंका हो रही है स्वयं नमाज के पढ़ने के बारे में, तो इसकी दो स्थिति होती हैं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि वो जो शंका उसको हो रही है वो शंका उसकी नमाज के समय के अंदर ही हो रही है, यानी अभी नमाज का समय बाकी था और उसको ये शंका हो रही है कि उसने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। जैसे एक मिसाल दे दूँ, बात स्पष्ट रहे, जैसे जोहर के असर के समय उसको ये शंका हो रही है, जैसे अगर मान लीजिए नमाज जोहर और असर का समय 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है, उसको 3 बजे या 4 बजे ये संदेह हो रहा है, ये शंका हो रही है कि उसने नमाज जोहर या नमाज असर या दोनों पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। स्वयं नमाज के पढ़ने के बारे में संदेह हो रहा है। तो एक संदेह ये हुआ कि नमाज के समय के अंदर शंका हो रही है। तो अगर नमाज के समय के अंदर शंका हो इस बात के बारे में कि उसने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो उसका दायित्व ये है कि नमाज को पढ़े, यानी अगर यही जोहर और असर के बारे में जो हमने बयान किया आपके सामने, तो उसको चाहिए कि अपनी नमाज को दोबारा पढ़े। लेकिन अगर समय निकल जाने के बाद यही शंका हो, जैसे हमने जो पीछे आपके सामने मिसाल दी वही मिसाल अगर यहाँ पर देख लें, यानी हमको जोहर और असर की नमाज के पढ़ने के बारे में शंका हो रही है उस समय जब मगरिब का समय आ गया है, मतलब मगरिब की नमाज़ अज़ान हो रही, तो हमको शंका हुई पता नहीं हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो ऐसे समय में उसके लिए दोबारा नमाज़ पढ़ना अनिवार्य नहीं है, उसको दोबारा नमाज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ये जब नमाज का समय बाकी हो या नमाज का समय निकल गया उस समय के बारे में था। अब यहाँ पर भी एक मसला वो आता है कि कुछ लोग वो होते हैं, कुछ व्यक्ति वो हैं जिनको संदेह और शंका बहुत अधिक होती है, उनको इस बारे में क्या करना चाहिए? अगर कोई कसीरु शक इंसान है, बहुत अधिक शंका करने वाला है, उसको इस बारे में शंका हो कि हमने नमाज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, चाहे वो समय के अंदर हो चाहे समय निकल जाने के बाद, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में हमारे फुकहा ये कहते हैं कि ऐसे इंसान को उसी व्यक्ति के तरह कार्य करना चाहिए जैसे एक आम व्यक्ति होता है। यानी अगर आम व्यक्ति समय के अंदर इस बात की शंका करता है कि नमाज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो इस बहुत अधिक शक करने वाले को भी उसी की भांति नमाज को पढ़ना होगा और नमाज के समय निकल जाने के बाद इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको वसवास की बीमारी है, यानी हमेशा शंका में पड़ा रहता है, इस प्रकार के व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने वसवास के ऊपर ध्यान ना दे, चाहे वो नमाज का समय बाकी हो या नमाज का समय निकल गया हो। तो ये वो हुई जब हमको स्वयं इस बात का संदेह था कि हमने नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी। दूसरा संदेह इस प्रकार का होता है स्वयं नमाज के बारे में, इस प्रकार का हो सकता है कि जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा या नहीं पढ़ा है। पहला ये हुआ कि हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। यहाँ पर संदेह इस बात का पढ़ा तो है, हमें पता है कि हमने पढ़ा है, लेकिन शंका और संदेह इस बात का हो रहा है कि हमने जो पढ़ी है नमाज़ या हमने जो ज़िक्र पढ़ा है वो नमाज सही थी या नहीं थी, वो ज़िक्र सही था या नहीं था। तो ऐसे वक्त पे, ऐसे समय पे हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर इंसान को किसी ज़िक्र के किसी हिस्से के पढ़े जाने के सही होने के बारे में संदेह हो तो उसको अपने संदेह के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको ऐसा ही रहना चाहिए जैसे उसने सही पढ़ा था, चाहे वो नमाज का समय निकल चुका हो चाहे नमाज के समय के अंदर हो। तो ये वो चीज़ें थी जो नमाज के अंश के बारे में थी, यानी स्वयं नमाज के बारे में हमको संदेह हुई, जो हमने आपके सामने बयान किया। अब जैसा कि हम पिछले कई प्रोग्राम से ये बात बताते हुए आए हैं कि जब इंसान को संदेह होता है कभी कभी रकतों के बारे में, तो उसको एक चीज़ होती है, एक नमाज़ पढ़नी होती है जिसको नमाज़ एहतियात कहते हैं। अब शायद हमारे बहुत से दर्शकों के जहन में प्रश्न उठे कि ये नमाज़ एहतियात है क्या चीज़, इसको कैसे पढ़ा जाता है और इसके बारे में मसाइल क्या हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपके जहन में आ सकती हैं जिसको हम अपने इस प्रोग्राम में आपके सामने बयान कर रहे हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं नमाज़ पढ़ते समय, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान को नमाज़ एहतियात पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर इंसान नमाज़ पढ़ते समय ये शक करे कि नमाज जो पढ़ रहा है वो तीसरी रकात है या चौथी रकात है, तो ये वो स्थान है जब इंसान को नमाज़ एहतियात पढ़नी होती है। तो नमाज़ एहतियात का तरीका ये है, यानी जिस समय नमाज़ एहतियात पढ़ना होता है उसको ये है कि जिस समय नमाज तमाम हुई, यानी चौथी नमाज चौथी रकात समझते हुए जब उसने नमाज का सलाम फेर दिया, सलाम पढ़ चुका, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी शुरू होती है नमाज़ एहतियात के बारे में, कि जैसे ही सलाम समाप्त हो जाए वैसे ही बिना कोई ऐसा कार्य किए हुए जिससे नमाज की सूरत बिगड़ती हो, जैसे कि क़िबले से रुख ना मोड़े, बातचीत ना करे, इस प्रकार की चीज़ें, यानी इस प्रकार की चीज़ें किए बिना उसको चाहिए कि सीधा खड़ा हो जाए। अज़ान और अकामत इस नमाज में कहने की आवश्यकता नहीं है, तकबीर कहे और तकबीर कहने के बाद नमाज को अंजाम दे, नमाज को पूरा पढ़ ले। उसके बाद अब ये होता है कि नमाज जो एहतियात पढ़ी जा रही है उस नमाज में और दूसरी नमाज़ों में क्या अंतर है, क्या ये कोई विशेष नमाज है, इसका कोई विशेष तरीक़ा है या ऐसे ही नमाज है जैसे हम आम नमाज़ें पढ़ते हैं। तो नमाज एहतियात और हमारी आम नमाज़ों में, जैसे हम सुबह, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ें पढ़ते हैं, इसमें छोटा सा कुछ अंतर है जिसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला अंतर ये है कि जैसे हम दूसरी नमाज़ें पढ़ते हैं तो दूसरी नमाज़ों में हम नियत दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम अपने दिल में, अपने दिमाग में जहन नियत कर लें, दूसरा ये कि हम अपनी ज़बान से नियत को जारी करें। लेकिन जब नमाज एहतियात इंसान पढ़ना चाह रहा है तो वो नमाज एहतियात पढ़ने से पहले जो नियत कर रहा है उस नियत को अपनी ज़बान से जारी नहीं कर सकता है, यानी अपनी ज़बान पे नियत के लफ्ज़ों को, नियत के शब्दों को नहीं ला सकता है। और दूसरा अंतर ये है कि और नमाज़ें, जितनी भी नमाज़ें होती हैं उन सब नमाज़ों में दो चीज़ें होती हैं, पहले कि हम सूरह हम्द पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि एक दूसरा सूरह उसके बाद पढ़ते हैं, जैसे अलहम्द पढ़ा उसके बाद इन्ना तैना या इन्ना अंज़लना, कोई भी दूसरा सूरह पढ़ते हैं, ये नमाज़ का एक आम तरीक़ा होता है, और उसमें कुनूत पढ़ते हैं, ये तरीक़ा है, इस प्रकार सभी नमाज़ें होती हैं। लेकिन नमाज एहतियात जो है वो इससे थोड़ी सी भिन्न है। इसमें जिस समय इंसान नमाज एहतियात पढ़ रहा है सूरह हंद पढ़ेगा, दूसरा सूरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और कुनूत वगैरह भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, जिस समय इंसान नमाज एहतियात पढ़ रहा है उस समय सूरह हंद जो पढ़ रहा है, जो सूरह अलहमद को पढ़ रहा है, उसको चाहिए कि अलहमदों के सूरह को धीमी आवाज़ में पढ़े, तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में ना पढ़े। यहाँ तक के एहतियात वाजिब ये है कि उस सूरह हम्द से पहले पढ़ी जाने वाली जो बिस्मिल्लाह है उसको भी धीमी आवाज़ में पढ़े। तो ये नमाज एहतियात से संबंधित कुछ मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए। इस नमाज एहतियात से संबंधित एक या दो मसले और हैं जिसको हम अपने अगले प्रोग्राम में आपके सामने अवश्य बयान करेंगे, और उसके बाद हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए, इंशाल्लाह हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।